लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग मानवीय रिश्तों की जगह न ले, व्यक्ति की गरिमा का सम्मान करे तथा हमें अपने समय के संकटों का सामना करने में मदद प्रदान करे। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, हम अपने कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत पवित्र हृदय पर संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरितिक पत्र दिल एक्सित नोस, अर्थात उसने हमें प्रेम किया है की चर्चा सुन रहे हैं। श्रोताओं, हमने दिल एक्सित नोस के चौथे अध्याय की शुरुआत की है, जिसका शीर्षक है एक प्रेम जो हमें अपने को पे स्वरूप देता है। कलिस्से के विभिन्न आचार्यों ने, विशेषकर एशिया माइनर वालों ने, यीशु के घायल बगल के बारे में कहा कि वह पवित्र आत्मा के जल का उद्गम स्थल है। शहीदों में साहस के उद्भव को हम स्वर्गीय जल धारा में बहता हुआ पाते हैं, जो ख्रिस्त की बगल से प्रवाहित होता है, या रूफिनियस के व्याख्यानुसार स्वर्गीय और अनंत धारा का प्रवाह यीशु के हृदय से होता है। हम विश्वासी गणों का जन्म पवित्र आत्मा में होता, जो चट्टान की दरार से उभरने की भांति है। हम अपने को यीशु ख्रिस्त के हृदय से उत्पन्न होता पाते हैं, उनकी घायल बगल जो उनके हृदय के रूप में है, पवित्र आत्मा से पूर्ण है, जहां से हमारे लिए जीवन जल की धारा बाढ़ स्वरूप आती है। पवित्र आत्मा के स्रोत को यीशु में हम पूरी तरह से पाते हैं। यद्यपि पवित्र आत्मा जिसे हमने पाया है हमें पुनर्जीवित यीशु से कभी दूर नहीं करते हैं, बल्कि वह हमें उनकी उपस्थिति से भरते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा के पान में हम स्वयं यीशु ख्रिस्त के पान को पाते हैं। संत अम्ब्रोस के शब्दों में, यीशु का पान करो, क्योंकि वे हमारे लिए वे चट्टान हैं जहां से जल धारा प्रवाहित होती है। यीशु का पान करो क्योंकि वह जीवन के स्रोत हैं। ख्रिस्त का पान करो क्योंकि वे वह नदी हैं जिसकी जलधारा ईश्वर के शहर को आनंदित करती है। ख्रिस्त का पान करो क्योंकि वे हमारी शांति हैं। यीशु का पान करें क्योंकि उनकी बगल से जीवन की जल धारा प्रवाहित होती है। श्रोताओं, संत पापा फ्रांसिस कहते हैं कि संत अगुस्टिन ने हमारे लिए पवित्र हृदय की भक्ति का द्वार खोला, जहां हम व्यक्तिगत रूप में यीशु के संग अपने मिलन को पाते हैं। संत अगुस्टिन के लिए यीशु ख्रिस्त की घायल बगल केवल कृपा और संस्कारों का स्रोत मात्र नहीं, लेकिन ख्रिस्त के संग हमारे अंतरंग संबंध की निशानी है, जहां हम उनके संग अपने प्रेममय मिलन को पाते हैं। वहां हम अपने लिए अति मूल्यवान प्रज्ञा के स्रोत को पाते हैं, जो हमारे लिए उनका ज्ञान है। असल में संत अगुस्टिन लिखते हैं कि सुसमाचार लेखक अति प्रिय शिष्य संत योहन अंतिम व्यारी में यीशु की छाती में झुकते हुए प्रज्ञा के रहस्यात्मक स्थल के निकट पहुंचते हैं। यहां हम अपने लिए ईश शास्त्रीय सच्चाई को अमूर्त रूप में केवल बौद्धिक चिंतन के लिए नहीं पाते हैं। संत जेरोम जैसे कि इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं, एक व्यक्ति में चिंतन करने की योग्यता उस जल धारा की सुंदरता पर आनंदित नहीं होती, बल्कि उस जीवन जल का पान करती है जो ईश्वर की बगल से प्रवाहित होता है। श्रोताओं, संत बेर्नर्ड यीशु के बेधित बगल को एक निशानी के रूप में लेते और इससे स्पष्ट रूप से उनके हृदय के संपूर्ण प्रेम के प्रकटीकरण और प्रवाह के रूप में समझते हैं। अपने उस घाव के द्वारा ख्रिस्त अपने हृदय को हमारे लिए खोलते और हमें प्रेम और दया के असीम रहस्य को ग्रहण करने में सक्षम बनाते हैं। मैं ईश्वर के कटोरे से अपने लिए उन चीजों को लेता हूँ जिनकी कमी का एहसास मैं अपने जीवन में करता हूँ, क्योंकि उनका कटोरा करुणा के पूर्ण छिद्रों के माध्यम प्रवाहित होता है। वे जिन्होंने उन्हें क्रूस पर चढ़ाया, उनके हाथों और पैरों को बेधित किया, उन्होंने एक भाले से उनकी बगल को छेदा, और उन छिद्रों से मैं जंगली शहद और चमत्कार पत्थरों की चट्टानों से तेल का स्वाद ले सकता हूँ। अर्थात मैं यह अनुभव कर सकता हूँ कि ईश्वर भले हैं। एक भाला उनकी आत्मा से होते हुए उनके हृदय तक पहुँच गया। ऐसा नहीं कि वह मेरी कमजोरियों पर दया करने के योग्य ना हो। उनके शरीर में जो घाव किए गए वे हमारे लिए उनके हृदय के रहस्यों को प्रकट करते हैं। वे हमें उनके प्रेम के महान रहस्य पर चिंतन करने को सक्षम बनाते हैं। श्रोताओं, यह विषय हमारे लिए मुख्य रूप से थियरी के संत विलियम में पुनः प्रकट होता है, जो हमें यीशु के हृदय में प्रवेश करने का निमंत्रण देते हैं, जो हमें अपनी छाती से पोषित करते हैं। यह हमारे लिए आश्चर्य की बात नहीं होगी यदि हम संत विलियम में इस बात की याद करते हैं। कलाओं की कला प्रेम की कला है। प्रेम को हम प्रकृति के सृष्टिकर्ता में सृजित पाते हैं, और यह आत्मा की शक्ति है जो हमें मानो अपने स्वाभाविक गुरुत्वाकर्षण से अपने उचित स्थान और लक्ष्य की ओर ले चलती है। वह सही स्थल जहां हम प्रेम के पूर्ण राज्य को पाते हैं यीशु ख्रिस्त का हृदय है। हे प्रभु, आप उन लोगों को कहां ले जाते हैं जिन्हें आप गले लगाते हैं और अपने हृदय से लगाकर रखते हैं। तेरा हृदय यीशु वह मधुर दिव्य मन्ना है जिसे तूने अपने सुनहले आत्मा के पात्र में रखा है, और वह सारे ज्ञानों से परे है। धन्य है वे जो उस गहराई में गोता लगाते हैं। तूने उन्हें अपने हृदय की गहराई में छिपा कर रखा है। संत बोनावेंतुरा इन दो आध्यात्मिक तरंगों को मिलाते हैं। वे यीशु के हृदय को संस्कारों और कृपाओं के स्रोत स्वरूप प्रस्तुत करते हैं, और वे हमें इस बात के लिए चिंतन करने का आह्वान करते हैं कि वह हृदय हमारे लिए मित्रों से संबंध स्थापित करता है, जहां हम प्रेम के एक व्यक्तिगत मिलन को पाते हैं। संत बोनावेंतुरा सबसे पहले हमें कृपा की सुंदरता और संस्कारों की प्रशंसा करने को कहते हैं जो हमारे लिए यीशु के घायल हृदय से प्रवाहित होता है। यह इसलिए कि क्रूस पर सोते हुए यीशु की बगल से कलीसिया का निर्माण हो सके और सुसमाचार के कथन पूरे हो सके। वे उसकी ओर देखेंगे जिन्हें उन्होंने बेधित किया है। एक सिपाही ने उसकी बगल को भाले से बेधित कर दिया। यह दिव्य योजना में पूरी हुई जिससे घाव से बहने वाला लोहू और पानी हमारी मुक्ति की कीमत उसके छिपे हुए हृदय से प्रवाहित हो। यह कलीसिया के संस्कारों को कृपा का जीवन प्रदान करने में सक्षम बनाता है, और इस प्रकार यह उन लोगों के लिए जो मसीह में रहते हैं जीवन झरने से प्याला भरने की तरह होता है जो अनंत जीवन की ओर बढ़ रहा है। संत बोनावेंतुरा इसके बाद हमें एक अलग कदम लेने को कहते हैं जिससे कृपा की तरह हमारी पहुंच को एक प्रकार के जादू या नव प्लेटोनिक उत्सर्जन के रूप में न देखा जाए, बल्कि मसीह के साथ एक सीधे संबंध के रूप में, उसके हृदय में निवास के रूप में, ताकि जो कोई भी उस स्रोत से पान करे वह मसीह का मित्र एक प्रेमपूर्ण हृदय बन जाए। उठो तब हे आत्मा जो मसीह के मित्र हो, और वह कपोत बनो जो चट्टान की दरार में घोंसला बनाती है। वह गौरैया बनो जो घर ढूंढती है और लगातार उसकी रखवाली करती है। वह कबूतर बनो जो अपने प्रेम की संतान को उस सबसे पवित्र कोख में छिपाकर रखती है। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलीसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरित पत्र दिल एक्सित नोस की चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।
वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने संत फ्रांसिस डी सेल्स संस्था की 29वीं महासभा को एक संदेश भेजा और सभी सलेसियनों को मसीह के प्रति अपने जुनून और युवा लोगों को शिक्षित करने के प्रति समर्पण को नवीनीकृत करने हेतु प्रोत्साहित किया। 16 फरवरी से 12 अप्रैल तक इटली के टूरिन में 29वीं महासभा का आयोजन अर्जेंटीना में उनके संस्थापक के पहले मिशनरी अभियान की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रहा है। संत पापा फ्रांसिस ने संत फ्रांसिस डी सेल्स संस्था के सदस्यों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करने के लिए एक संदेश भेजा। सलेसियन समुदाय युवा लोगों को शिक्षित करते हैं, उन्हें ऐसे काम सिखाते हैं जो उन्हें समाज में योगदान देने वाले आत्मनिर्भर सदस्य बनने में मदद करेंगे। अपने संदेश में संत पापा ने फादर फाबियो अट्टाई को बधाई दी, जो माल्टा में जन्मे पुरोहित हैं, और महासभा ने सलेसियन संस्था के नए मेजर रेक्टर के रूप में उन्हें चुना है। संत पापा ने सलेसियनों को धर्म सभा में विवेक, विश्वास और प्रतिबद्धता के साथ पवित्र आत्मा की बात सुनने के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि वे अगले कुछ वर्षों के लिए अपने मिशन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। उन्होंने महासभा के लिए उनके चुने गए विषय की सराहना की, यीशु मसीह के प्रति भावुक और युवाओं के प्रति समर्पित सलेशियन। उन्होंने कहा, यह एक सुंदर लक्ष्य है, भावुक और समर्पित होना, अपने आप को प्रभु के प्रेम में पूरी तरह से समर्पित होने देना और अपने लिए कुछ भी रखे बिना दूसरों की सेवा करना, जैसा कि आपके संस्थापक ने अपने समय में किया था। संत पापा फ्रांसिस ने कहा कि समकालीन समाज धार्मिक आदेशों के लिए अनूठी चुनौतियां प्रस्तुत करता है, जो पिछली पीढ़ियों के सामने आने वाली चुनौतियों से अलग है। फिर भी उन्होंने कहा, समर्पित धर्मसंघियों का विश्वास और प्रतिबद्धता वही रहती है और अंतर सांस्कृतिकता के उपहार सहित नए उपहारों से लगातार समृद्ध होती रहती है। अंत में संत पापा ने शिक्षा के क्षेत्र में सलेसियनों के काम के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और उन्हें दृढ़ता के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उधर सोमवार को एक दिल दहला देने वाली घोषणा में संयुक्त राज्य अमेरिका के धर्माध्यक्षों ने बच्चों की सेवाओं और शरणार्थी सहायता से संबंधित संघीय सरकार के साथ मौजूदा सहकारी समझौते को नवीनीकृत न करने के अपने निर्णय को सार्वजनिक किया है। यह कदम शरणार्थियों के पुनर्वास के कार्यक्रमों को निलंबित करने के सरकार के निर्णय के जवाब में उठाया गया है, जिससे धर्माध्यक्षों को हिंसा और उत्पीड़न से सुरक्षित आश्रय की तलाश कर रहे हमारे भाइयों और बहनों की सेवा करने की सर्वोत्तम तरीके पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। निर्णय की घोषणा करते हुए संयुक्त राज्य के कैथोलिक धर्माध्यक्षों के सम्मेलन के अध्यक्ष महाधर्माध्यक्ष तिमोथी ने उल्लेख किया कि यूएससीसीबी ने अपनी स्थापना की शुरुआत से ही विस्थापित परिवारों को संयुक्त राज्य में पुनर्वास करने की मदद की है। पिछले कुछ वर्षों में संघीय सरकार के साथ साझेदारी ने जीवन रक्षक कार्यक्रमों का विस्तार करने में मदद की है, जिससे दुनिया के कई हिस्सों से हमारी बहनों और भाइयों को लाभ हुआ है। हालांकि यह हमारी सरकार के साथ जीवन निर्वाह साझेदारी का एक दर्दनाक अंत है, यह हर कैथोलिक को सहायता करने के नए तरीकों के लिए अपने दिलों की खोज करने का अवसर प्रदान करता है। उन्होंने आव्रजन नीति सुधार के लिए धर्माध्यक्षों की निरंतर वकालत का वचन दिया और मानव तस्करी के अभिशाप के पीड़ितों के लिए वकालत करने की उनकी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। और सृष्टि की देखभाल हेतु विश्व दिवस का विषय शांति और आशा के बीच। समग्र मानव विकास को बढ़ावा देने हेतु गठित परिषद ने विश्वव्यापी पहल के लिए संत पापा द्वारा चुने गए विषय की घोषणा की है, जो 1 सितंबर से 4 अक्टूबर तक चलेगा। 2025 संस्करण, जयंती वर्ष और विश्व पत्र लौदातो सी की 10वीं वर्षगांठ पर सृष्टि के साथ शांति, युद्ध और हिंसा तथा हमारे सामान्य घर के क्षरण और संसाधनों की बर्बादी के बीच बहुत करीबी संबंध है। संदेश में प्रार्थना करने का आग्रह किया गया है, ताकि शांति के लिए परिस्थितियां निर्मित हो सकें, एक स्थायी शांति का निर्माण हो सके जो आशा को प्रेरित करे। यह संदेश विभिन्न महाद्वीपों की अच्छी प्रथाओं और शांति एवं आशा के बीजों को दर्शाता है। उधर संत इजिडियो समुदाय और विभिन्न इतालवी मंत्रालयों और संगठनों के बीच एक नए समझौते के तहत समुदाय के मानवीय गलियारा कार्यक्रम के माध्यम से अफगानिस्तान के 700 शरणार्थियों का इटली में स्वागत किया जाएगा। इजिडियो समुदाय के अध्यक्ष मार्को इम्पल्याजो ने कहा, अगस्त 2021 में काबुल से बड़े पैमाने पर पलायन के बाद बड़ी मुसीबत में अपने देश से भागने के लिए मजबूर हुए अफगानों के लिए यह आखिरकार उम्मीद की किरण है। कुल मिलाकर संत इजिडियो द्वारा विभिन्न संगठनों के साथ मिलकर प्रवर्तित मानवीय गलियारा पहल ने 8,200 शरणार्थियों को सुरक्षित रूप से यूरोप पहुंचने में मदद की है। उधर गाजा में इजरायली हमले लगातार जारी हैं। इजरायली नागरिक नेतन्याहू सरकार से एक समझौते की मांग कर रहे हैं, जिससे हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों की शीघ्र रिहाई हो सके, जबकि फिलिस्तीनियों ने इस्लामिक समूह पर इजरायली जवाबी कार्रवाई को भड़काने का आरोप लगाया है। स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार कल सोमवार 7 अप्रैल को इजरायली हमलों में कम से कम 30 लोग मारे गए, जिनमें आधे से अधिक महिलाएं और बच्चे थे, जो एक चैरिटी रसोई की कतार में खड़े थे जो विस्थापितों को भोजन वितरित कर रही थी। इजरायल द्वारा क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कम से कम एक महीने के लिए लगाए गए प्रतिबंध के कारण उत्पन्न नाटकीय मानवीय स्थिति के संदर्भ में आबादी के भरण पोषण के लिए कुछ महत्वपूर्ण चौकियों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र के नेताओं ने भी इस स्थिति की कड़ी निंदा की है, जिन्होंने बताया है कि कैसे महत्वपूर्ण वस्तुओं को हफ्तों तक सीमा चौकियों पर रोक कर रखा गया है। भोजन, दवाइयां, ईंधन आश्रयों के संचय के कारण 2,10,00,000 भूखे लोगों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।